আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদাম বাইনাল মা'ই ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ, ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামিল মালিকিল হাইয়্যিল কাইয়্যুম। আজ কি আমারি ইস রুহানি তারবিয়াতি নশিস কা উনওয়ান হ্যায় মামুলাত اور معاملات, یہ تو بڑی اہم چیزیں اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے اور اس کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کا ارشاد گرامی ہے کہ معمولات اور معاملات جس کے درست ہیں وہ آدمی درست ہے۔ ایک جملہ ہے, اس میں سب کچھ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے اندر درست کر لیں تو آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں درست ہو جائیں۔ ایک معمولات جس کو آپ کہتے ہیں روٹین, ڈیلی روٹین, روزانہ آپ کیا کرتے ہیں۔ دوسرے معاملات, افیئر, آپ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملات۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ان دونوں کا تعلق, ایک کا تعلق اللہ سے اور دوسرے کا بندوں سے, بالفاظ دیگر حقوق اللہ اور حقوق العباد, ہم پر اللہ کے بھی حق ہیں حقوق اور بندوں کے بھی حقوق ہیں, تو جو آدمی ان دونوں حقوق کو صحیح طور پر ادا کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب, اور یہیں پر اگر خرابی ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب پہلی چیز ہم یہ لیتے ہیں, معمولات, ہم روزانہ کیا کر رہے ہیں, اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کیا کرتا, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, کوئی اور آ کے آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ کیا کر رہے, آپ خود اپنا محاسبہ کریں, خود دیکھیں۔ صبح جب آپ اٹھے اس وقت سے لے کر اور رات کو بستر پر لیٹنے تک پورے دن میں آپ نے کیا کیا, اگر رات کو سونے سے پہلے آنکھ بند کر کے پورا جائزہ لے لیں, ایک فلم کی طرح پورا دن آپ کے سامنے چل جائے, کہاں پر گئے, کس سے بات کی, کتنا جھوٹ بولا, کتنا سچ بولا, کس کو دھوکہ دیا یا کس کو دھوکہ نہیں دیا, ساری چیزیں سامنے آ جائیں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, خود آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اور اس میں یہ دیکھیں کہ اگر اس پورے دن میں آپ کا وقت اگر کہیں پر ضائع ہو رہا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بہت سے لوگ ہیں ہوٹل پہ بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں, دوستوں میں بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں, ٹی وی دیکھ کر وقت گزار رہے ہیں, فضول فلمیں دیکھ کر یا موبائل لے کر یا انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے ہوئے, واٹس اپ, یہ چیزیں غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے, اس کا صحیح استعمال بھی ہے لیکن غلط استعمال کرتے ہوئے اپنا ٹائم ضائع کر, غلط چیزیں دیکھ کر اپنا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ آنکھ جو دیکھتی ہے ذہن قبول کرتا ہے اور دل وہی کرنے کے لیے کہتا ہے, اس لیے پہلے آنکھ کو بچائیے تاکہ ذہن پاک ہو جائے, اور ذہن بچے گا تو دل پاک ہو جائے۔ تو ہم اپنے ڈیلی روٹین کو دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو آپ دوسرے ہی دن سے آپ یہ پروگرام بنا لیں کہ اب یہ ٹائم جو ہے میں کسی اچھے کام میں گزاروں, اور یہاں سے جو آپ کو وظائف بتائے گئے ہیں, مثلا کوئی فجر کے بعد, کوئی ظہر کے بعد, عصر, مغرب, عشاء, مختلف نمازوں کے بعد, کسی کو دعائے حفظ البحر, کوئی دلائل الخیرات, کوئی درود تاج, مختلف وظائف پڑھ رہے ہیں, ان کے بتانے کا مقصد یہی ہے कि आपका जो टाइम है वो इबादत में ही शुमार हो, गलत फजूल जाया ना हो। अगर आप किसी गलत उस तरफ जा भी रहे हैं तो फौरन ख्याल आएगा कि नहीं, वहां जाने से पहले मैं अपना वजीफा मुकम्मल कर लूं, उस गलत रास्ते की तरफ जाने से आप बच जाएंगे, फजूल गुफ्तगू करने से आप बच जाएंगे। अब आप ये देखें कि मसलन बहुत सों के पास रात गुजारने के लिए क्या कहना चाहिए कि बेचैन है, कैसे रात गुजरे, कोई काम ही नहीं, घर से उठे जाकर बाहर बैठ गए, चार पांच दोस्त आकर बैठ गए, 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे फिर जरा सी कुछ नींद का खुमार हुआ तो फिर उठकर घर की तरफ गए। ये 3 घंटे या 4 घंटे जो आपने जाया किए बिल्कुल फजूल गए। उसमें क्या हुआ, या तो किसी की गीबत हुई या दोस्तों को हंसाने के लिए झूठ बोला, लोग झूठ बोलते हैं ना, या कोई ऐसी हरकत की, फजूल टाइम जाया हूं। यही टाइम अगर हम अपने वजीफा पढ़ने में गुजार दें, यही टाइम अगर हम तिलावत कुरान में गुजार दें, यही टाइम अगर हम किसी की मदद करते हुए गुजार दें, यही टाइम अगर हम मुताला करते हुए गुजार दें, तो वही टाइम इबादत में शुमार हुआ। और फजूल बैठकर आपने गुजार दिया, कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं, उल्टा नामा अमाल में लिखा गया इसने इतनी देर गीबत की, इतनी देर झूठ बोला, इतनी देर फजूल टाइम गुजारा, इतनी देर शैतानियत में, क्या फायदा हुआ। सबसे पहले अपने मामूलात को दुरुस्त कीजिए, पहली चीज। और ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आम आदमी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अहले तरीकत अगर करें तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि अपने मामूलात को दुरुस्त करें। अगर उनके मामूलात खराब होंगे तो फिर वो तरीकत में एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते, ऊपर मंजिल तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, पहली सीढ़ी पर ही कदम नहीं रखेंगे। ये बेस है, बुनियाद है मामूलात को दुरुस्त करना। और मामूलात में क्या क्या चीजें हैं, एक तो ये मैंने बता दिया कि पहले तो हम देख लें कि कौन सा टाइम हम फजूल जाया कर रहे हैं, उस टाइम को मैनेज कर लें। इसमें अब हम फजूल दोस्तों में नहीं जाएंगे, हम अपना काम करेंगे। क्या काम करेंगे, तिलावत कुरान करेंगे, वज़ाइफ पढ़ेंगे, कुछ नहीं तो दीनी किताबें पढ़ेंगे, और कुछ नहीं तो कुछ और ऐसा काम करेंगे जो सवाब के हुसूल का जरिया हो, फजूल ना हो। दूसरी चीज, जो जो वज़ाइफ आपको बताए गए उसको पाबंदी के साथ अदा कीजिए। अब इसमें भी एक चीज की मैं वजाहत कर दूं, एक तो मुश्किल यह है कि हर चीज की वजाहत करनी पड़ती। हजरत मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल से इसलिए परेशान, हर बात में सवाल, हर बात में सवाल, हर बात में सवाल। खैर, ये लोग सवाल नहीं करते तो दूसरी तरह परेशान करते। मसलन अगर एक नशीत में ये बता दिया कि आप इबादत का एहतमाम करें, आप मुसल्ला एक रखें, आप वक्त एक रखें, आप तादाद एक रखें, ये बता दिया, लेकिन इसके बाद हमने ये भी वजाहत कर दी कि अगर कभी ऐसा हो कि आप एक जगह का तायुन ना कर सकें, मिसाल के तौर पर घर में मेहमान आ गए, अब आप ड्राइंग रूम में आप पढ़ते हैं वजीफा, मेहमान आ गए आप किसी और कमरे में पढ़ ली, या उनको रिसीव करके उनको लुक आफ्टर करके मिलकर जब वो चले जाएं फिर पढ़ लीजिए। नहीं, वो तो लकीर के फकीर ऐसे हजरत ने कहा था कि टाइम की पाबंदी, अब मेहमानों से नहीं मिलूंगा मैं ड्राइंग रूम में पढ़ता हूँ, मेहमानों को निकालो, मियां बीवी में लड़ाई हो। अरे अल्लाह के बंदे, ये किसने कहा है, दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना है, या तो निकल जाओ जंगल में, जाके गार में बैठ जाओ, वहां कोई मेहमान नहीं आएगा, ना बीवी होगी ना बच्चा, कोई नहीं होगा, अकेले बैठे हुए तू हो, तेरा जलवा हो और गोशे तन्हाई। लेकिन सालिक के लिए जरूरी है कि दुनिया में भी रहे, दुनिया वालों के साथ भी रहे, लेकिन वासिले इल्लाह रहे, रुजुए इल्लाह रहे, उसकी गालिब तवज्जो अल्लाह की जानिब हो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ रहे हैं आप, ये नहीं कहा भी सबको छोड़ दें। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिला शुबा इबादात का एहतमाम कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आए आप वजीफा लेट कर सकते हैं, मेहमानों से मिलना ज़रूरी है, रिश्तेदारों से मिलना ज़रूरी है, एक टाइम आपने बना लिया, टाइम आगे पीछे हो गया कोई मसला नहीं, एक जगह आपने मुंतखब कर दी, मुकर्रर कर दी, लेकिन अगर उस जगह मेहमान बैठे हैं, आपका घर छोटा है, कोई अलहदा कमरा नहीं कि आप वहाँ जाकर वजाइफ पढ़ सकें, तो उसमें क्या है, आप थोड़ा सा लेट कर दीजिए, वो चले जाएँ, आप फिर कर लीजिए, या अगर अलहदा कमरा है तो आप वहां पढ़ ली। मतलब ये तो ऐसी कॉमन सेंस की बात है कि जो आदमी खुद भी सोच सकता है, ठीक है ना। अगर इस तरह आप करेंगे तो फिर तो घर में लड़ाई होना लाजमी है, और जो बेचारा चल कर आपसे मिलने के लिए आया है वो क्या करेगा, उस पर क्या असर पड़ेगा। और दूसरी जो सूरत है जो बहुत खतरनाक है वो क्या है कि वो फिर हमसे दूर हो जाएंगे। क्यों? घर वालों ने ये कहा कि पीर साहब ने इनको ये बता दिया कि भाई एक टाइम मुकर्रर करो, पीर साहब ने ये कह दिया कि जगह मुकर्रर करो, देखो ये लड़ रहा है जगह पर, ये टाइम पे लड़ रहा है, मेहमानों से नहीं मिल रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखें, और ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं। आदमी खुद भी सोच सकता है कि कोई ऐसा मसला हो, आप वजीफा लेट कर दें, बाद में पढ़ लें, ठीक है ना, बात आप समझ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा फालतू टाइम की वजह से या किसी गलत काम की वजह से या बेकार काम की वजह से वजीफे को लेट ना करें, उसमें फिर अहमियत दें अपने वजीफे को। कहने का मकसद ये है, रूटीन मामूलात ये होने चाहिए, जब टाइम हो गया बस बैठ गए। यानी आपको बेचैनी होनी चाहिए, जैसे खाने की भूख होती है, खाने का टाइम हुआ ना, भूख लग रही है, खाना मिलना चाहिए, आदमी बेचैन है, इसी तरह रूहानी भूख होनी चाहिए वजीफे की। जब वजीफे का टाइम हो जाए आप बेचैन हो जाएं कि किसी तरह मैं पढ़ लूं ताकि मेरी रूहानी भूख मिट जाए। रूह की गिजा है तिलावत कुरान, रूह की गिजा है वजाइफ, रूह की गिजा है जिक्रुल्लाह, रूह की गिजा है जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह की गिजा है जिक्र औलिया अल्लाह, ये रूह की गिजा। तो ये सब हम करते हैं, हमारी रूह में ताजगी पैदा होती, हमारी रूह को तवनाई मिलती है, कुव्वत मिलती है, रूहानियत मिलती है। तो इसलिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अब बात क्लियर हो गई ना, आप एहतमाम करें, सब कुछ करें, लेकिन अपने रूटीन ऐसे बनाएं कि आपका टाइम फजूल ज़ाया ना हो। बात समझ रहे थे? गलत किस्म की चीज़ें ना देखें कि आपकी निगाह ख़राब हो, निगाह ख़राब होगी तो जहन ख़राब होगा, और जहन ख़राब होगा तो दिल पर असर, दिल ख़राब होगा, एक का ताल्लुक दूसरे के साथ। इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं। दूसरी चीज़ क्या है, हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जो बिल्कुल फजूल हैं, मतलब जिनका ना फायदा है ना नुकसान, बल्कि अक्सर का तो नुकसान भी है, और अक्सर ऐसे है कि जिसका ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। मसलन आप दोस्तों में बैठकर फजूल बातें एक घंटे तक आपने की, आपको क्या फायदा हुआ या उस दोस्त को क्या फ़ायदा हुआ? वही एक घंटा तिलावत कुरान में गुजार दिया, एक घंटा इबादत में लिखा गया, नामायमान में लिखा गया कि एक घंटे इबादत की या नवाफिल पढ़े या वज़ाइफ पढ़े, कोई भी चीज़। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम ये देखें कि ये जो 24 घंटे के हमारे औकात हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं। अब आप एक बात को अपने जहन में रखें और इस पर गौर भी कर सकते हैं, तजर्बा भी कर सकते हैं कि 24 घंटे हमारे पास 24 घंटे हैं ना, और यही 24 घंटे गौस पाक के पास भी थे, यही 24 घंटे गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद के पास, यही 24 घंटे बाबा फरीद के पास, यही 24 घंटे दाता गंजबख्श अली हिजवेरी के पास, यही 24 घंटे मखदूमे समनानी के पास। उन्होंने इन 24 घंटों में क्या किया और वो क्या से क्या बन गए, और हम क्या कर रहे हैं, हम और पस्ती में चले जा रहे हैं। उन्होंने इस 24 घंटे को मैनेज किया अपने टाइम को, हमें फजर के बाद ये करना है तो जोहर के बाद ये करना है, असर के बाद ये करना है, रात में नवाफिल पढ़ने हैं, तिलावत कुरान करनी है, इतनी देर सोना है, इतनी देर खाना है, पूरे टाइम को। तो इन्हीं 24 घंटों में जिसमें से तकरीबन 12 घंटे हम जाया कर देते हैं, उन्होंने पूरे के पूरे 24 घंटों को अपने काम में लिया, और फिर देखो कहां से कहां पहुंचे। और ऐसा नहीं कि वो ये दुनिया को छोड़कर चले गए, दुनिया को छोड़ दिया नहीं, दुनियावी मामूलात भी किए। हजरत गौसल आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी रदी अल्लाह ताला नू तिजारत भी करते थे, पढ़ाते भी थे, तबलीग भी करते थे, तहरीर भी करते थे, तकरीर भी करते थे, करामात भी दिखाते थे। एक फर्द वाहिद सब कुछ कर रहा, दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चल रहा, आपकी औलाद मौजूद। इसी तरह दीगर बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन, तो अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो हम उन्हीं की तरह करें, यानी कि हम एक तरफ होकर बैठ जाएं, सब दुनिया को छोड़ दिया दीन को लेके बैठ गए, या दीन को छोड़ दिया माजल्ला सिर्फ दुनिया को लेके बैठ गए, दोनों को लेकर चलें और तवाजुन रखें, तवाजुन रखें। जो बीवी बच्चों के हुकूक हैं वो भी आप अदा करें, जो अल्लाह तबारक व ताला के हुकूक आप पर हैं वो भी अदा करें, जो दीगर बंदों के हुकूक आप पर हैं वो भी आप अदा करें, तब आप सही तौर पर कामयाब हो सकते हैं, वरना कामयाबी नामुमकिन है। अब एक बात यह है, बहुत से लोग अपने मामूलात में सही हैं लेकिन मामलात में गड़बड़। दो चीजें हमने बताई थी ना, मामूलात और मामलात। मामूलात रूटीन और मामलात अफेयर, ये दोनों चीजें, दोनों दुरुस्त होंगी तब आप दुरुस्त होंगे। अब कुछ लोग मामूलात में बिल्कुल दुरुस्त हैं, वज़ाइफ भी टाइम पे हैं, पांचों नमाजें भी हैं और तहज्जुद भी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मामलात में सिफर, झूठ, गीबत, वादा खिलाफी, अमानत में खयानत, क्या फायदा हुआ मामूलात का, नमाजों का क्या फायदा हुआ? इसलिए मामूलात को बचाने के लिए मामलात को दुरुस्त रखना जरूरी है। बात समझ रहे हैं? मामूलात को, जो नेक काम आप कर रहे हैं उनको बचाने के लिए जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करना जरूरी है। अब मैं इसको और आसान कर दूं। अब देखें, अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम मुनाफिक हो, किसी को आप कह दें, मानेगा? मानेगा? लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे मुनाफिक कह दिया, मैं नहीं हूं मुनाफिक, क्यों तुमने मुझे मुनाफिक कहा? लड़ने के लिए तैयार, और सरकार ने जो निशानियां बताई वो मौजूद। फरमाया मुनाफिक की एक निशानी ये है, इजा हदसा कजबा, जब भी बात करेगी झूठ बोले, वह इजा वादा अखलाफा, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अभी तुम इना खाना, और जब अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे। बात करे झूठ बोले, वादा करे वादा खिलाफी करे, और अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे। तीन चीजें मुनाफिक की निशानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बता दी। अब हर शख्स अपने अंदर देख ले कि तीन चीजें मेरे अंदर हैं या नहीं। अगर हैं तो फिर कौन हुआ? कहेगा जी हम तो मोमिन हैं, मुनाफिक मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो निशानियां हटाओ अपने अंदर से। अक्सर लोग और गैर महसूस तरीके से झूठ बोलते हैं, ऐसे बोल दिए जैसे कोई बात ही नहीं है। अब यह अफवाहें चल रही है ना, किसी ने कहा चार मरे, उसने आगे बताया नहीं भाई आठ मरे थे, उसने और आगे बताया, उसने कहा बारह थे, उसने कहा पंद्रह थे, तादाद बढ़ती जा रही है, तहकीक किसी ने नहीं की। और हदीस शरीफ के मुताबिक इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है कि बगैर तहकीक के बात आगे पहुंचा दे। और आजकल झूठ का जोर है, झूठ चल रहा, झूठ बोलते हैं, झूठ सुनते हैं, झूठ देखते हैं, और झूठ लिखने वालों को अवार्ड देते हैं। ड्रामा झूठ है ना, जो ड्रामा लिखता है उसको अवार्ड देते हो, जो फिल्म लिखता है फिल्म की पूरी कहानी उसको अवार्ड देते हैं, झूठ है सर। जो फिल्म में मर गया क्या वाकई मर गया, जिसकी शादी हो गई क्या हो गई, झूठ है, अवार्ड दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, बालफाजे दीगर ये बहुत बड़े झूठे, हमने इनको अवार्ड दिया झूठ बोलने को, झूठ का जमाना है। इसलिए हमें चाहिए हम खुद अपने आप को झूठ से बचाएं। औरों को छोड़ दो, औरों को छोड़ो, अपने आप को झूठ से बचाओ, पहली चीज, ताकि मुनाफिक की एक निशानी हमारे अंदर से खत्म हो जाए। दूसरी बात, वादा करो तो वादा खिलाफी ना करो। असल में इसको हमने इसलिए भी इस नशिस्त का उनवान बनाया, नाम तो नहीं लेना चाहिए, नाम लेना वैसे भी गलत है, पर्दापोशी होनी चाहिए। अक्सर लोगों को ये देखा गया कि अहले तरीकत हैं लेकिन ये चीज़ें मौजूद हैं, ये बहुत गलत है। अहले तरीकत हैं यानी सिलसिले में दाखिल है, वज़ाइब भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, साथ साथ झूठ भी है, साथ साथ वादा खिलाफी भी है, साथ साथ अमानत में खयानत भी है। ये बहुत बड़ी, यानी समझें ये जहर कातिल है राह सलूक तय करने वालों के लिए, कभी तरक्की नहीं कर सकते, तरीकत की एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता अगर ये तीन चीजें मौजूद होंगी। सबसे पहले अपने आप को साफ करना जरूरी है, पहले अपनी जबान को झूठ से पाक कर लें, अहद कर लें कि आज से इंशाल्लाह कभी झूठ नहीं बोलें। और जब इंसान अहद कर लेगा, कोशिश करेगा, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, अल्लाह की मदद शामिल है। हालो नबी पाक अलैहिस्सलाम का उस्वा हसना देखिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मजाह भी फरमाते थे, खुशतबाई फरमाते थे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल। एक औरत आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऊंट चाहिए। फरमाया इसको ऊंट का बच्चा दे दो। अब वो, मैं तो आपसे ऊंट मांग रहे हैं, आप ऊंट का बच्चा दे। उसने सोचा बच्चे से क्या होगा, इतना छोटा सा बच्चा, मैंने तो ऊंट मांगा है। फरमाया भाई हर ऊंट किसी ना किसी ऊंट का बच्चा ही है ना। अब गौर किया, हाँ वाकई बच्चा, मजाह में भी सच्चाई है। एक औरत ने कहा रसूल अल्लाह दुआ कीजिए मैं जन्नत में जाऊं, बूढ़ी औरत। फरमाया जन्नत में बूढ़ी नहीं होंगी औरतें। अब वो घबरा गई, जन्नत में बूढ़ी औरतें नहीं जाएंगी, रोना शुरू हो गया, मैं तो बूढ़ी हो गई, अब जाहिर जवान तो हो नहीं सकती, मैं कैसे, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। सरकार मुस्कुराए, फरमाया भाई जन्नत में जो बूढ़ी होंगी वो भी जवान हो जाएंगी। मजाह में भी सच्चाई। सच्चे आका का उस्वा हसना ये है, हम झूठ बोलते हैं हंसाने के लिए, बात करने के लिए, इसमें भी एहतियात। जबान का असर ख़त्म हो रहा। कहने का मकसद ये है, पहली चीज़ सच्चाई, सच बोले, झूठ ना बोले। और दूसरी चीज़, वादा खिलाफी तो आम है बिल्कुल। मैं कल आ जाऊँगा, दूसरे दिन गायब। मैं परसों ये काम कर लूँगा, वो बेचारा इंतज़ार कर रहा है, गायब। मैं अभी आपको फ़ोन कर रहा हूँ, फिर गायब। मैं ये काम कर दूँगा, फिर गायब। मुनाफिक की निशानी पैदा हुई या नहीं हुई? और कह दो मुनाफिक है तो मानेंगे नहीं, निशानियां सारी मौजूद। अमानत में खयानत, किसी ने कोई पैसे रखने के लिए दिए, खुद इस्तेमाल कर ली, जैसे कि हमारा जाती माल है, कोई फिक्र नहीं, आराम से बिल्कुल। अब बाद में पूछा तो यार जरूरत पड़ गई थी, और फिर देने की नियत भी नहीं, और जगह सब खर्चे हो रहे हैं, और जिसके मान लिया उसको देने की फिक्र नहीं। एक पैसा भी हो तो अपने जहन में रखना चाहिए कि मुझे लौटाना है, एक पैसा भी हो किसी का, अगर आप जहन में रखें और उसको लौटाएंगे अल्लाह की तरफ से अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। और अगर नहीं लौटाएंगे तो कयामत में देना पड़ेगा, और कयामत में क्या होगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा, अमाल मुंतकिल होंगे, अमाल मुंतकिल होंगे। सरकार ने फरमाया अय्युल मुफलिस, बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स कौन है। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला दिरहम लहु वला मता। मुफलिस वो है जिसके पास मालो मता ना हो, दिरहम व दीनार ना हो। आज भी अगर कोई हमसे पूछे तो हम यही कहेंगे, मुफलिस के माना फकीर, मुफलिस के माना गरीब, वही आदमी जिसके पास पैसा ना हो। सरकार ने फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो है, अता यौमल क़ियामा, इस हाल में क़यामत में लाया जाएगा कि उसके नामे अमाल में नमाज होगी, रोज़ा होगा, हज होगा, ज़कात, सदक़ात, खैरात सब होंगे नामे अमाल में। लेकिन इसके साथ साथ वमन कतला हाजा, वमन ज़रबा हाजा, वमन अकला माला हाजा, वमन शतमा हाजा, किसी को गाली दी होगी, किसी से किसी पर जुल्म और ज्यादती की होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी को जुल्मन मारा होगा, ये सारी चीज़ें भी नामे अमाल में होंगी। और फिर क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जिन लोगों के साथ उसने ऐसा किया होगा इसकी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी जाए। गौर करो, नमाजें लेकर गए, रोजे, हज, जकात सब लेकर गए, लेकिन साथ साथ जुल्म, ज्यारती, माल, यतीमों का माल खाना, बेवाओं का, ये सारी चीजें भी। तो हुजूर ने फरमाया इसकी वो नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी जिनका माल इसने खाया होगा, या जिन पर जुल्म ज्यारती की होगी, जिनको गाली दी होगी, जिनको तकलीफ पहुंचाई होगी। और जब वो नेकियां तकसीम हो जाएंगी तो क्या होगा, अब इसके नामा या माल में कुछ नहीं, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं। फरमाया ये है मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स, बताओ उससे बड़ा मुफलिस कोई होगा कि सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कयामत की उस मुफलिसी से हमें बचाए। इसलिए वहां की उस मुफलिसी से बचने के लिए यहां कोशिश करो, यहां कोशिश करो कि तुम्हारे ऊपर किसी का कोई एक पैसा कर्ज नहीं होना चाहिए, ना कारोबार में और ना वैसे, एक पैसा नहीं होना चाहिए। यहां कोशिश करो कि किसी के साथ तुमसे जुल्म और ज्यादती ना हो, यहां कोशिश करो कि किसी के साथ वादा खिलाफी ना हो, यहां कोशिश करो कि किसी के साथ जुल्म और ज्यादती ना हो, यहां अपने मामलात बंदों के साथ दुरुस्त कर लो, अल्लाह तबारक व ताला अपना मामला खुद ब खुद दुरुस्त कर दे। दो चीजें, तो इन दो चीजों का अगर हम ख्याल रखें और अपने जहन में रखें कि इन दो चीजों को हम दुरुस्त कर लेंगे, तो आप समझ लें कि इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अब होता क्या है, हमने किसी को पढ़ने के लिए बताया, मसलन अल्लाहुस्समद एक वजीफा है, आप लोग भी पढ़ते हैं, रिज़क के लिए, रोजगार के लिए बेहतरीन वजीफा, 3125 रोज आप पढ़ें, 40 दिन में 1,25,000 हो जाएगा। किसी को 1100 दफा बताया, किसी को 22 दफा बताया, किसी को 500 दफा बताया, मुख्तलिफ जैसे जिसकी तादाद। अक्सर क्या हुआ, एक आदमी 3125 मरतबा अल्लाहुस्समद रोज पढ़ रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं चल रही। क्या मतलब, कारोबार में फायदा नहीं। 40 दिन हो गए, फिर आ गए हजरत, हमने कहा फिर पढ़ो, फिर पढ़े, फिर 40 दिन हो गए, फिर आ गए, फिर पढ़ो, दो दो चिल्ले कर लिए, तीन तीन चिल्ले कर लिए, मामला एज इट इज। वजह क्या है, वजह यह है, अच्छा उससे पूछा कि कोई इसमें नागा कोई गैप नहीं हजरत, मैं बड़ी पाबंदी से पढ़ो, बस इशा की नमाज होती है और मैं पढ़ते ही मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है, क्या मसला है, जब इसने तीन चिल्ले कर लिए, बीच में कोई गैप नहीं, कोई नागा नहीं, कुछ नहीं, पाबंदी से पढ़ रहा, कारोबार में कोई फायदा नहीं हो रहा, अब ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला के इसमें मुबारक में असर ना हो, तो नामुमकिन है ना। हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है, पढ़ने में गलती हो सकती है, उसके कलाम में, उसके नाम में, उसके इसमें पाक में, उसके जिक्र में कोई नक्स कोई खराबी नहीं हो सकती। वजह क्या हुई, मामूलात तो दुरुस्त हैं, मामला दुरुस्त नहीं, अल्लाहुस्समद भी चल रहा है, साथ में झूठ भी चल रहा, वादा खिलाफी भी चल रही, धोखा दही भी चल रही, अमानत में खयानत भी चल रही, कैसे असर हो। असर देने वाला तो वही है ना, और वो हर चीज से बाखबर है कि ये आदमी एक तरफ तो मेरा जिक्र करके अपनी जबान को पाक कर रहा है और दूसरी तरफ सारा दिन झूठ बोल के अपनी जबान का असर खराब कर रहा, कैसे फायदा होगा, हिसाब बराबर है, जो आया वो चला गया, इसलिए फायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए जरूरत है कि मामूलात और मामलात दोनों दुरुस्त होने चाहिए, अल्लाह के साथ जो मामलात हैं वो भी दुरुस्त हों और बंदों के साथ जो हैं वो भी दुरुस्त हों, किसी की दिल आजारी आपसे ना हो, किसी पर जुल्म और ज्यादती ना हो, किसी के हुकूक की पामाली ना हो, कोई भी हो, घर वाले हों या बाहर वाले हों या रिश्तेदार हों, जिसके हुकूक आप पर हैं, आप पर किसी का हक नहीं होना चाहिए, आपकी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, जो जो आप पर हुकूक हैं आप उसको अदा कीजिए और उसके बाद फिर इबादत कीजिए, फिर देखिए कैसे असर पैदा हो। यह हकीकत, एक फैक्ट, असर ना होने की वजह यही है। तो ये दो चीजें अगर हम अहले तरीकत जितने भी हैं और मामलात में ये सारी चीजें आती हैं, यानी अगर आप कारोबार कर रहे हैं उसमें भी झूठ ना बोलें, अगर आपको किसी को पेमेंट नहीं देनी तो आप कह दें कि नहीं दे रहा, आप झूठ ना बोलें कि कल दूंगा, फिर कल आए तो फिर कहें परसों दूंगा, झूठ हो गया, सही बात बता दीजिए। अगर आपने झूठ बोला, वजीफा पढ़ने का कोई फायदा नहीं, किसी की अमानत ली और उसको जाया कर दिया और देने का इरादा नहीं, वजीफा पढ़ने का कोई फायदा नहीं, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए एक तरफ मामूलात की पाबंदी और दूसरी तरफ मामूलात गड़बड़, कोई फायदा नहीं होगा, जो इधर से रूहानियत आई वो इधर से निकल गई। अमल करो और उसे बचाओ, जो वजीफा पढ़ो उसका असर कायम रखो, जो नमाज पढ़ो उस पढ़ी हुई नमाज को बचाओ। कुरान ने कहा ना, अकीम सलात, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो नहीं, कायम करो। क्या मतलब, पढ़ी हुई नमाज को कायम रखो, बात समझ रहे हैं, पढ़ी हुई नमाज को कायम रखो, ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ने के बाद कोई एक अमल ऐसा कर दो कि वो सब बेकार हो जाए। एक नेकी की दो गुना कर दिए, क्या फायदा हुआ? नामा अमाल में तो दो गुना लिखे गए ना, दो नेकियां की चार गुना कर दिए, हिसाब बराबर हो गया। तो इसलिए जो जो नेकी करें उसे बचाएं, जो जो नमाज पढ़ें उसे कायम रखें, जो जो वज़ाइफ पढ़ें उसे कायम रखने की कोशिश करें। और ये उसी वक्त होगा जब हम दो चीज़ों पर पूरी तरह गौर करेंगे, एक अपने मामूलात को दुरुस्त करेंगे, दूसरे अपने मामलात को दुरुस्त करेंगे। हम में से अक्सर ऐसे हैं कि जिनके मामलात दूसरों के साथ बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हम लोगों की पर्दापोशी करते हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, औरतों में मर्दों में, और ये नशीज इंटरनेट पर जाएगी, जो जो सुनेंगे वो खुद अपना मुहासबा कर लें और देख लें अगर उनके मामला दुरुस्त नहीं हैं तो वो दुरुस्त कर लें, अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। हमारी परेशानी की वजह यही है, हम परेशान हैं, हम ये हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा वावेला हो रहा है। पहले अपने आप को दुरुस्त कर लो, सब दुरुस्त हो जाएगा। एक साहब ने बहुत प्यारा शेर कहा, मैं अक्सर नशीज में पढ़ता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामे आमाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। फजर के वक्त तो सो रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं और 12 बजे काम पे जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं जी काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कैसे मिलेगा? जिस वक्त फरिश्ते रिजक लेकर उतरते हैं, जिस वक्त रहमत खुदाबंदी तुम्हें देने के लिए बेचैन होती है, उस वक्त तो तुम सो रहे होते, और जब फरिश्ते चले जाते हैं फिर उठते हैं साहब बहादुर, 12 बजे तो मुंह धुलता है, बल्कि शेरों का तो मुंह ही नहीं धुलता, ऐसे ही चले जाते उठ के, क्या खाक फायदा होगा? फजर की पाबंदी सब कर ले, मैं पूरी दावे से कहता हूं आधी से ज्यादा परेशानी दूर हो जाएगी। रिजक बटने का टाइम वही है, फरिश्ते रहमतें लेकर उतरते हैं, हदीस शरीफ के मुताबिक फजर में और असर में दो नमाजों में फरिश्तों की हाजिरी होती, गायब। तो अगर हम इसकी पाबंदी कर लें सारी परेशानी दूर हो जाए। तो खैर वक्त मुख्तसर है, आज की इस नशिस्त का उनवान हमने यही रखा था कि मामूलात और मामलात, और आज की इस नशिस्त का मैसेज भी यही है कि हम सब अहले तरीकत अहले मोहब्बत हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अपने मामलात यानी रिलेशन अफेयर इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लें। हम किस तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का अदब करें, एहतराम करें, गीबत ना करें, झूठ ना बोलें, एक दूसरे को धोखा ना दें, वादा करें तो वादा खिलाफी ना करें, अमानत अगर हो तो उसमें खयानत ना करें, ये सारी चीज़ें हम दुरुस्त कर लें, बाकी मामलात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएं। ये आज का एक मैसेज है और ये पैगाम है। आखिरी बात यह है, क्योंकि अब नशीद बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है, कि अल्लाह तबारक व तआला के करम से और बुजुर्गान दीन की निगाह करम से, खुसूसन नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम से, ये फ़कीर कल हज बैतुल्लाह की सआदत के लिए रवाना हो रहा, तो आप सब के लिए इंशाअल्लाह वहाँ पर दुआ होगी और सबका सलाम इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएगा। जो मोहब्बत से भेजेगा उसका पहुंचेगा इंशाल्लाह, उसमें हमारी कोई वो नहीं, वो तो सरकार जिसको चाहेंगे, उनको तो यहीं से पता है, हकीकत तो ये है कि यहीं से उनको पता है किसने सलाम भेजा, वो तो हमारा कहना तो एक अलग बात है, वो यहीं से जानते हैं किसने मोहब्बत के साथ सलाम भेजा, वो कबूल कर रहा। इसीलिए हम इज्तमाही तौर पर वहाँ जाकर यही अर्ज करते हैं, जाहिर है नाम बनाम आप जानते हैं कि मुश्किल है, इज्तमाही तौर पर या रसूलल्लाह जिस जिसने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया आप कबूल फरमा, सरकार कबूल फरमा रहे, इसलिए तो आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हम दोनों की दुआ एक दूसरे के हक में कबूल कर ले। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ कर, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी इबादात को कबूल फरमा, या अल्लाह हम सबको हरमैन शरीफैन की बाअदब हाजिरी नसीब फरमा, बानसीब हाजिरी नसीब फरमा, जो लोग गए हैं उनको अदब हाजिरी और बखैरियत वापसी नसीब फरमा, और जो लोग नहीं जा सके तमन्ना रखते हैं उनको इंशाअल्लाह आइंदा साल इस सआदत से मुशर्रफ होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्ज़दार हैं उन्हें बारे कर्ज़े से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फरमावरदार बना। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक आमाल की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, हरम शरीफ के हादसे में हमारे जो मुसलमान भाई शहीद हो गए उन सब की मग़फ़िरत फरमा। उनकी मग़फ़िरत तो वैसे ही हो चुकी कि हरम में शहादत मिली, अज़ीम दर्जा उनको मिला। उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा और उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से मुसलमान हज बैतुल्ला की शहादत हासिल करने के लिए गए हैं, ऐ इलाहुल आलमीन उन सब को बहिफाजत बखैर व आफियत वापसी नसीब फरमा और उन सब के हज को कबूल फरमा और उनकी जूतियों के सदक़े में हमारे हज को भी कबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन ये तमाम हजरात और ख़वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में अमल में उम्र में बरकत अता फरमा, इनके रोज़गार में तरक्की अता फरमा, इनकी ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।